कल हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर और संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करता है जब वो अवतरित हुए थे उसकी शुरुआत की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर और कल के बलराम आविर्भाव दिवस बलराम जयंती तो पहला 15-16 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद है जो ऑलमोस्ट आखिरी दिन तक पहुंच गया दशम स्कंद चल रहा है और हालांकि महाराज परीक्षित न कुछ खाए हैं न सोए हैं न पानी पिए हैं पर एक तो उनका उत्साह नजर आता है कितने उत्साह से वो कृष्ण कथा सुनने के इच्छुक है। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् हम कृष्ण को जानने की कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की जैसी हमारी इच्छा होती है और उतना उत्साह दिखाते हैं उस हद तक भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो महाराज परीक्षित वहां प्रश्न पूछ रहे हैं और न केवल उत्साह बल्कि उनकी कृतज्ञता सुखदेव गोस्वामी के ऊपर कि उन्होंने ऐसा व्यक्ति जो कहीं एक कुछ क्षण भी नहीं ठहरते। सुखदेव गोस्वामी जब भ्रमण करते थे एक तो उनको कोई पहचान ही नहीं पाता था क्योंकि बाहर से ऐसा दिखते थे वो पागल आदमी हो आम लोगों के लिए वो पागल जैसे लगते थे इसीलिए लोग पत्थर फेंकते थे हंसी मजाक करते थे। उसमें भी अगर वो किसी गृहस्थ के घर में जाते थे तो वहां भी केवल दूध दोहने का जो समय है कुछ मिनट वहां ठहरते थे और थोड़ा दूध लेकर निकल जाते थे। पर क्या दूध के लिए जाते थे? वो तो खुद बोलते हैं दूसरे स्कंद में जो अगर थोड़े कुछ फायदे के लिए किसी का गुणगान करता है घृणात्मक रूप से ऐसे लोगों की बातचीत करते हैं वो। क्या पेड़ में फल आजकल बंद हो गए हैं क्या? क्या सोने के लिए हाथ नहीं दिया है क्या भगवान ने तकिया जैसे? क्या पृथ्वी गद्दा देना बंद कर दिया सोने के लिए? क्या आजकल नदी में पानी बंद हो गया है? तो फिर शरीर की सारी जरूरतें अगर नैसर्गिक रूप से उपलब्ध है तो फिर क्यों चापलूसी करने गए सब लोगों की गुणगान करते हुए इन लोगों का? तो ऐसे व्यक्ति क्यों जाएंगे किसी के यहां? अगर जा भी रहे हैं तो वो केवल उनका फायदा सोचते हुए। और परीक्षित महाराज ये जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी दिखना बड़ा मुश्किल है पहचानना बड़ा मुश्किल है ऐसे महान व्यक्ति को और वो भी किसी को मिलते भी हैं तो कुछ मिनटों तक बस। पर आप जैसे व्यक्ति 7 दिन और 7 रात लगातार मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए मेरे ऊपर इतना कृपा करके आप सुना रहे हैं मेरे लिए तो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। और कृतज्ञता कैसे प्रकट कर रहे हैं? बड़ी ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए कि ऐसा मौका नहीं बड़ा मुश्किल से मिला है ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन में से एक है 12 महाजनों में एक है सुखदेव गोस्वामी। ऐसे व्यक्ति का 7 दिन और 7 रात लगातार और खास परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तो कृतज्ञता पूर्वक उनको धन्यवाद देते हैं और आतुरता। कहते हैं कि विस्तृत रूप से समझाइए, आपने तो शॉर्टकट में बता दिया, संक्षिप्त रूप में बता दिया आपने, एक श्लोक में ही बता दिया पूरा, अब उसको विस्तृत रूप से सुनाइए। और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के बाद बोलते हैं ये सब प्रश्नों का उत्तर और जो प्रश्न मैंने नहीं पूछा उसका भी उत्तर दे दीजिए आप, जो जो मुझे सुनना है सब सुना दीजिए कृष्ण के बारे में। और फिर कहते हैं कि क्यों मुझे सुनना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही एक मेरा आश्रय है। और कल हमने चर्चा की, ये जानते थे कि हरि कथा की महिमा क्या है। निवृत्त तर्षय उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा, तो ये मुझे मनुष्य जीवन की सफलता है मुझे मिली है। और बाद में कहते हैं कि मेरे पितामह आपके शरण गए, मेरे कृष्ण के शरण गए, और वो कौरव सैन्य के सागर को पार कर गए, तिमिंगल जैसे खड़ी थी पर आराम से पार गए, वत्सपदम, वत्सपद जैसे खुर भर पानी जैसे इस कौरव सैनी के सागर को हमारे पितामह पांच पांडवों ने पार कर लिया कृष्ण की कृपा से, कृष्ण का आश्रय लेने से। मैं अपनी मां के गर्भ में जल के राख हो गया था ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, पर क्योंकि मेरी मां ने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया मैं जीवित हो गया, भगवान का दर्शन कर पाया। तो हरेक जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है निश्चित है ब्रह्मास्त्र के रूप में, जातस्य ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ दिया वो बच नहीं सकता, इसी तरह से हमारे ऊपर भी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो इससे पहले कि वो आ जाए अगर हम भगवान की शरण लेंगे कैसे, हरि कथा द्वारा। तो इस तरह से ये जानते हुए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए कि मैं इतने समय से खाया नहीं हूं पिया नहीं हूं, हां 7 दिन पहले मेरे से गलती हो गई, जो खाया नहीं था पिया नहीं था सोया नहीं था, थोड़ा विचलित हो गया था, तो ऋषि के सर पे मैंने गले पे सांप डाल दी, पर आज पिबंतम त्वद मुखाम भोजन च्युतम हरिकथामृतम, आज क्योंकि मैं आपके मुख से हरिकथा सुन रहा हूं आज मुझे वो भूख और प्यास और ये चीजें असर नहीं कर रही है, कर रही है पर मेरी मेरा कर्तव्य जो है उसमें से मैं चूक नहीं रहा हूं इन बाधाओं के कारण। पूरी दुनिया प्यासी है भूखी है, धन जन सुंदरीम कविताम, पर कम से कम जब हरि कथा सुनते हैं तो चीजों को असली तरह से समझ पाते हैं क्या मूल्यवान चीजें क्या नहीं। और इसी तरह से यहां सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत किए और सुखदेव गोस्वामी को प्रस्तुत किए और सुखदेव गोस्वामी अभी उनको धन्यवाद दे रहे हैं। भागवत तब जीवित हो जाता है जब ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता हो जो पूर्ण निवृत्त तर्षयर, जिनके हृदय में पूर्ण रूप से किसी प्रकार की तृष्णा नहीं हो, उपगीयमाना जो परंपरा से आए हुए संदेश को पचाकर अपने साक्षात्कार के अनुसार सुना रहे हो, और जो श्रोता है उस सुखदेव परीक्षित महाराज जैसे हो, इस कथा की महत्व को जानते हो, तीव्रता हो, कृतज्ञ हो और ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित रूप से भागवत जो है जीवित हो जाता है। एक मरा हुआ कोई पुस्तक नहीं है ये, भगवान भागवत जो है ये नित्य लीला है, हमेशा चल रही है। ये सारी लीलाओं में जो वर्णन हुआ है भगवान के, ये नित्य लीला है, वैकुंठ के सारे जो अवतार हैं इनकी लीला जो नित्य है, तो उस नित्य लीला में हम प्रवेश कर सकते हैं अगर सही भावना से सही व्यक्ति से श्रवण करें तो। और कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न, निस्संदेह हे परीक्षित तुमने जो कहा सत्य है, वासुदेव कथा प्रश्न ही ऐसा है जो वक्ता है, जो श्रोता है, सबको फायदा करता है। और तुरंत उनको धन्यवाद देकर, क्योंकि वक्ता को भी प्रेरणा चाहिए, ऑफ कोर्स सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति हो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी भगवान भी प्रेरित होते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त का आदान प्रदान, वो भी भूखे हैं सेवा के। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर तुरंत अब भगवान के बारे में किस तरह से अवतार हुआ तुरंत चलते हैं। और कहते हैं कि एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी, कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, उनके प्रार्थना में भी कहती है, भगवान के अवतार के अलग अलग कारण बताती है और उसमें से एक है भारावतारणान्ये भुवो नाव इवोदधौ। जिस प्रकार से एक समुद्र के नाव में अगर बहुत ज्यादा बोझा डाल दे तो वो डूबने की स्थिति में आ जाता है, इस तरह से माता पृथ्वी को एक बार बहुत बड़ा बोझा हो गया, वो त्रस्त हो गई इस बोझा से और वो एक गाय का स्वरूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि वही तो पूरे ब्रह्मांड में वही तो सर्वे सबसे प्रमुख है, तो और किसके पास जाती। तो इस तरह से बड़े करुणामय हृदय से आंखों में आंसू डालते हुए ताकि उनकी कृपा प्राप्त करे। स्वाभाविक है कोई आंसू ऐसा करते आता है तो सामने वाला हृदय पिघल जाता है, बोले क्या चाहिए, बोलो कर करता ए मत रो मत रो। बच्चा भी कभी रोता है, ठीक है क्या बेटा क्या चाहिए, बोल। तो एक गो का स्वरूप, गाय का स्वरूप, तो और भी ज्यादा दया आ जाता है। तो इस स्वरूप को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर गई वो। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पृथ्वी माता को बोझा कैसे होने लगा, इतने हजारों पहाड़ हैं, हिमालय जैसे पहाड़, क्या वो बोझा नहीं है, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, इतने बड़े बड़े नदियां बहती है, अपने घर के ऊपर एक टैंक बैठाना है, वाटर टैंक, तो पहले देखते हैं पिल्लर उल्लर ठीक है क्या, वो नहीं तो पूरा हिल जाएगा, वो सर के ऊपर आ जाएगा। एक छोटा सा टैंक 1500-15000 लीटर जो भी हो, और उसको ऊपर डालने में कितना, खाली टैंक को ऊपर उठाने में कितना तकलीफ, भरा हुआ तो क्या कहना, कितना बोझा है वो। पर बड़े बड़े समुद्र, नदियां, अच्छा एक पेड़ गिर जाता है तो उसको उठाने में क्या तकलीफ होता है, कॉरपोरेशन वाले 3-4 दिन लगाते हैं उसको, हाँ आधा आधा काटते काटते, और उसको ट्रक ले जाता है, उसको इतना मुश्किल होता है। लाखों करोड़ों पेड़ हैं, पृथ्वी माता को बोझा नहीं होता, 60-70 किलो वाले चलते फिरते पशु ये बोझा हो गए, दो पैर वाले वो भी, कितना ज्यादा ज्यादा 80 किलो का आदमी होता है, 120 किलो चलो थोड़ा खा पी के अच्छा हट्टा कट्टा हो, तो ये कैसे बोझा होने लगे पृथ्वी माता को। तो वो लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, माता पृथ्वी जब बोझा तब हो जाता है जब अनावश्यक सेना को राजागण एकत्रित करना शुरू करते हैं, अनावश्यक, और किस लिए सेना, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, मैं अहम ईश्वरोहम, अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं मैं भोगता हूं, यानी भगवान को नकार कर मैं ईश्वर हूं मैं भोगता हूं, और वो साबित करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे चलेगा, पर मेरा अहंकार उसका जीत होना चाहिए, लाखों को मारने के लिए तैयार है, कंस को देखिए, जब उसके पता चला कि एक बच्चा पैदा हो गया कहीं तो और वो मुझे मारने वाला है, बच गया कहीं यहां से आठवां बच्चा, तो उसने बोला जितने सारे बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो पिछले इतने दिनों में। तो ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति भी बड़ा बोझा बन जाता है। समझ लीजिए एक मां है, मां के लिए जो बच्चा का बोझ है वो बोझ नहीं है, बोझ है, खास करके अगर थोड़ा मोटा बच्चा हो तो बेचारे हाल उठाता है, तकलीफ होता है, पर प्रेम का बोझ है वो बोझ बोझा नहीं लगता। 10 बच्चे हो, पुराने जमाने होते थे, आजकल नहीं होते, होते बोझा नहीं है। हमारे घर में 7 बच्चे, 7-8 बच्चे होते थे पहले, वो बोझा नहीं है। अगर सबके सब आज्ञाकारी हो, सबके सब पिता को से प्रेम करते हो, सबके सब पिता को मदद कर रहे हो, तो माता ऐसे बच्चों को देखभाल करने में उसको आनंद है और ऐसे बच्चों को देखकर उसको हल्का लगता है, कोई चिंता नहीं। हिंदी में एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत, पूत यानी पुत्र, सपूत अगर बहुत अच्छा लड़का आपको एक मिल गया ना, तो फिर धन संचय करने की क्या जरूरत है, वही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा बच्चा आपको हमेशा सेवा करता रहेगा, आपको जिंदगी भर अंतिम सांस तक आपकी सेवा करेगा, आपको कोई चिंता ही नहीं पैसा इकट्ठा करने का, वो सब इकट्ठा करके लाके आपकी सेवा करेगा श्रवण कुमार जैसे। तो फिर धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूत सपूत और पूत कपूत, एक नंबर का चोर, एक नंबर का नालायक। तो धन संचय क्यों, जितने जितना धन संचय करोगे आपके सामने उसको उड़ा देगा और आपका हृदय जल जल के राख हो जाएगा। पूरा पूरा जिंदगी मैंने तपस्या करके खड़ा किया, मेरे आंखों के सामने उड़ा रहा है, मार भी नहीं सकते इसको और इसको रख भी नहीं सकते। पूर्व जन्म कृतम पापम पुत्र रूपे न प्राप्यते, ये पिछले जन्म का मेरा शत्रु है आज पुत्र के रूप में आ गया है और पूरा बदला ले रहा है, मेरा धन मेरे सामने उड़ा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, मार नहीं सकता, रख नहीं सकता। गरम रोटी मुंह में कभी कभी ले लेते, थूकने की भी दिल नहीं करता क्योंकि रोटी है, खाने भी नहीं हो सकता क्योंकि गरम है, ऐसी परिस्थिति। अगर ऐसा एक बच्चा हो, एक भी बच्चा ऐसा हो, तो माता के लिए वो बच्चा बोझा बन जाता है। प्रेम है, कोई कैसा भी पुत्र हो, धृतराष्ट्र को कैसा भी हो, दुर्योधन का आखिर मेरा बच्चा है गांधारी, क्या करे बेचारे, पर फिर भी इतना सरदर्द, इतना बोझा। और ऐसे अगर सबके सब नालायक बच्चे हो गए तो फिर सोचिए कितना बोझा हो जाता है मां को। एक छोटे से परिवार में, इसी तरह से एक समाज में, एक देश में, एक राज्य में, कुछ लोग अगर सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हो तो कितना सरकार को बोझा हो जाता है। सरकार का उद्देश्य है सबको अच्छे तरह से सब हो, सब अच्छा से देखभाल, पर कुछ लोगों का काम है, सरकार ने ब्रिज बनाया उसमें बम बांट के उड़ा देने का, बस ट्रेन में, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन में एक बम लगा के उड़ा देने, पटरी उड़ा देने, किसके लिए फायदा, किसको भी फायदा नहीं, बस मेरे को दिखाना है उसके विरुद्ध हूं। अभी हम देखते हैं टीवी में नक्सलाइट्स, ये उड़ा दिए, वो उड़ा दिए, कुछ भी। अभी एक कोई टेररिस्ट आया, आतंकवादी, और उसने बम विस्फोट कर दिया, एक दिन 10-15 लोगों को मार दिया और एक बम विस्फोट हो गया। कितना बड़ा सरकार पे बोझा, सब स्टेशन के ऊपर बंदूकधारी पुलिस और सब सब छोड़ के एक चुपचाप खड़े रहते उधर, सब घर के गेट में, सब सोसाइटी के गेट में एक एक बंदूकधारी सिक्योरिटी, सब कंपनी के सामने एक एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का अच्छा बिजनेस हो रहा है, पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है। एयरपोर्ट में जाओ, इसमें से घुसाओ, उसमें से घुसाओ, उसमें से घुसाओ, हर हैरान हो जाता है आदमी। ये सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी के लिए करोड़ों 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 रुपया, क्यों? क्योंकि एक दो लोगों ने ठान लिया है ये सब विस्फोट उड़ाते रहेंगे, सब उड़ाते रहेंगे कुछ भी कारण। तो अगर ऐसे उसको हजार गुना कर दीजिए, कितना बड़ा बोझा सरकार को, बोझा मतलब पैसे का बोझा, आर्थिक बोझा, कितना चिंता। तो इसी तरह से पृथ्वी माता जब देखती है कि आसुरिक व्यक्ति भगवान सब कुछ दे रहे हैं, खा पी के अच्छे तरह से रहो, तुम्हारी जरूरतें जो कुछ भी है सब मैंने दिया हुआ है, प्राकृतिक प्रकृति में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, मुफ्त में दिया हुआ है, हवा पानी खाना सब कुछ मैं दिया हुआ हूं, सिर्फ प्रेम से रहो आपस में, नहीं मैं सब इकट्ठा करूंगा तू मर जा। ये प्रवृत्ति जब आसुरी की होनी, ईश्वरो हम, पिता के विरुद्ध जाना, पिता का ही संपत्ति लेकर पिता को नकारना और माता के पेट में लात मारना, ऐसे बच्चे हो तो कौन सी माता बोझा नहीं महसूस करेगी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजा खास करके ऐसे राजा उस समय कृष्ण के आविर्भाव से थोड़े समय पहले, ऐसे पूरे राजा भरे हुए थे। जरासंध हम सुनते हैं ना, 23 अक्षौणी सेना लेकर आया, सारे आसुरिक राजा सब जगह प्रैक्टिकली सबके सब ऐसे हो गए। कंस है, कंस ने भी उसने अपना बड़ा एक शाल्व, सबके सब ऐसे दंत वक्र प्रलंब सबको उसने भौम, सब जगह ऐसे ही लोग सब, और उन लोगों में भी एक फर्स्ट क्लास यूनिटी। कैसा यूनिटी? तू मेरा पीठ खुजला, मैं तेरा पीठ खुजला, सब मिलके उनको मारेंगे बस, ऐसा उनमें। क्योंकि मेरा उद्देश्य भी वही है, तेरा भी उद्देश्य, चल हम दोनों मित्र। तो ऐसे राजा भरे पड़े थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक राजा का कर्तव्य क्या है, एक आदर्श राजा का कर्तव्य क्या है, वो देखना कि पूरी प्रजा सुखी रहे, उनकी जो भी जरूरतें हैं सब मिलनी चाहिए लोगों को, तो क्यों तकलीफ करेगी? पिता जैसे मानेगी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में हम देखते हैं सब खुशी थे, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरा राजा का कर्तव्य है, न केवल सब सुखी हो, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, न केवल उतना बल्कि हर एक व्यक्ति को प्रशिक्षण मिले कृष्ण भावना का, मतलब अपने जीवन सफल करे। क्षत्रिय क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, अपने प्रजा को क्षति यानी नुकसान से बचाना। किस चीज के नुकसान से? मनुष्य जीवन पाकर उसकी सफलता प्राप्त नहीं की। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो राजा का कर्तव्य था कि प्रजा जितने सारे हैं सबके सब कृष्ण भावना भावित हो जाए, जीवन की सफलता को प्राप्त करे, आत्म साक्षात्कार हो जाए। और उसके आत्म साक्षात्कार के विरुद्ध सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम वासना। तो उससे बचाना, काम क्रोध लोभ इत्यादि, उससे बचाने के लिए सख्त नियम लागू रखना। राजा से डरना चाहिए लोग नहीं, महाराज परीक्षित के समय में किसी की हिम्मत हो नशा जुआ व्यभिचार ये सब करने में कोई सवाल नहीं, परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि पूरे राज्य में, पूरे विश्व में, विश्व का साम्राज्य, कली को एक पैर रखने का जगह नहीं मिला। बोले आपके राजा में जगह में, आपके राज्य में जगह ही नहीं है मुझे पैर रखने के लिए, और स्थान दो। उन्होंने बोला जहां मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार होता है तू जा वहां ठहर सकता है। तो बोले है ही नहीं, कहां, कहीं नहीं, और एक जगह दो मुझे। तो ऐसे राजा, और फिर उन्हें न केवल प्रशिक्षण देना बल्कि देखना कि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार अपनी वृत्ति में अच्छी तरह से लगा हुआ है। एवरीवन इज प्रॉपरली एंगेज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड प्रोपेंसिटी। हर एक व्यक्ति अपने प्रभाव, अपने प्रवृत्ति, अपने स्वभाव के अनुसार लगा अपना कार्य अच्छी तरह से, अपना जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से कर रहा है। करने के लिए सौलभ्य देना और उसके बाद ठीक से कर रहा है क्या उसको मॉनिटर करके देखना, यह राजा का कर्तव्य था। और अंत में यह देखना कि हर एक व्यक्ति जीवन की जो अंतिम लक्ष्य है उसकी ओर प्रगति हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है तो राजा उसका जिम्मेदार है। उसको समझना चाहिए, अरे रे रे रे, मैं अपना कर्तव्य में चूक गया। राजा यानी सबका नौकर, एक्चुअली बड़े उसके महल होते हो, बड़ा खजाना होता हो, वेशभूषा ठीक है क्योंकि वह सेवा ही ऐसा है, पर उनके जीवन जो होते थे, महाराज युधिष्ठिर की दिनचर्या आप देखिए, पूर्ण रूप से प्रजा की सेवा में। महाराज वैदिक संस्कृति में, भागवत में भी हम देखते हैं कैसे कैसे हर एक व्यक्ति, एक छोट, एक महाराज शिबी, एक पक्षी आ गया, कबूतर, कबूतर आके कहता है कि मेरे पीछे एक, क्या बोलते हैं, चील, हाँ हाँ, वो पड़ गया है, वो मेरे पीछे पड़ गया है वो, और मुझे आश्रय दो। ठीक है, अभयदान, तू मेरा आश्रय में आ गया ना, तेरे लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं, पर तेरा संरक्षण होगा। ऐसा राजा, आदि लोगों को खा जाते, कबूतर को क्या देंगे संरक्षण। एक कबूतर आके बोल रहा है कि मेरे को संरक्षण दो, अभयदान, ठीक है मैं अपना जान देकर भी तेरी संरक्षण करूंगा, तुझे कोई चीज की चिंता नहीं, मैं हूं ना। तो उसने कहा मैं भी तो तेरा प्रजा हूं, मुझे भूख लगा है, मैंने पकड़ा ये और ये मेरा खाना है, नहीं 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 नहीं, तुझे मांस चाहिए ना, मैं दूंगा ना, किसको, बगल वाले को काट दो, ए मंत्री चल इधर आ, नहीं, बोले सब, सबका मैं सेवक हूं, तो ठीक है मेरा ही मांस ले ले, मेरे शरीर से ले ले, क्योंकि मैं सबका सेवक हूं, सब मेरे प्रभु हैं, प्रभु का गला कैसे काट के दे सकता हूं तेरे को, अब तो मेरे को ही देना पड़ेगा, चलो ठीक है मैं मेरा मांस देता हूं, चलो एक तराजू ले लो रख दो, काट दिया पैर से, जांग से निकाला और इतना मांस निकाल के रखा, एक किलो ऊपर ही है, यहां कबूतर बैठा हुआ है। फिर बोला ठीक है इधर से मांस काटा थोड़ा रखा, राजा आसन पर बैठ गए तुरंत, फिर हाथ से निकाला, इधर से निकाला, कुछ नहीं, पैर काट के रख दिए फिर भी नहीं, बंद, बोले एक काम करो मैं ही बैठ जाता हूं खुद बैठ गए महाराज शिबी। और तब ये पक्षी दोनों प्रकट हुए, देवतागण थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे, क्या सचमुच में ऐसा राजा हो तुम, और बोले हम पूर्ण रूप से तृप्त हैं, सचमुच में आप अपने प्रजा के सेवक हैं। भगवान गीता में कहते हैं सातवें अध्याय में, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको सब प्रिय है और सब उनको प्रिय है, वो सबको प्रिय है और उनको सब प्रिय है, ऐसा राजा, पिछले जमाने में ऐसे राजा होते थे, राजा के लिए प्रजा जान देने के लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि राजा भी प्रजा के लिए जान देने के लिए तैयार था। ऐसा प्रेममयी संबंध कब होगा? योग युक्तो विशुद्धात्मा, प्रभुपाद लिखते हैं उसके तात्पर्य में, सातवें अध्याय का पांचवां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, कभी समय मिला तो पढ़िए। कहते हैं योग युक्त जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, योग युक्त विशुद्धात्मा, उसकी मन बड़ा संतुष्ट है, विशुद्धात्मा, और क्योंकि मन संतुष्ट है विजित आत्मा, इंद्रियां काबू में है, और क्योंकि इंद्रियां काबू में है जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा, कैसे हो सकता है ये? क्योंकि वो अपने आप को सबका सेवक समझता है, जब सेवक समझता है तो सबकी सेवा करता है, सेवा जब करता है तो इंद्रियां, मन तृप्त है, मन तृप्त है तो इंद्रियां नियंत्रण में, तो ऐसे महाराज कहां, ऐसे महाराज और कहां आज के राजनीतिज्ञ। आज की परिस्थिति क्या है? रोग्स एंड थीव्स, प्रभुपाद लिखते, चोर और डाकू, देखिए पोस्टर भी देखिए, डर लगता है देखने में, एक एक का मूंछी, एक एक का चेहरा, और कितने सब जगह भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति कोई आया, वो स्टेशन में उतरा तो कम से कम शायद 10,000 का पटाखे, और उसको इतने सारा हार वार सब लगा दिया, 10,000 का पटाखा केवल उसके आने से। तो आज देखते हैं कितना परिवर्तन हो गया है, और केवल किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से एक पदवी को प्राप्त करने की इच्छा, और उसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, वोटिंग सिस्टम, और किसी न किसी बाय हुक और बाय क्रुक किसी न किसी तरह से वो एक परिस्थिति में, एक पोजीशन आना, और जैसे वो उस परिस्थिति में आए केवल लोगों का शोषण, और अहंकारी होने के कारण अपने को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, लाखों लाखों लोगों को एक क्या बोलते हैं लड़ाई में लगाने के लिए तैयार, वॉर, एक पूरा जो विश्व महायुद्ध युद्ध हुआ एक व्यक्ति की अहंकार, हिटलर, नहीं मेरा चलेगा इधर नहीं, चले ऐसा नहीं चलेगा, और उसके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, एक व्यक्ति की अहंकार, उसको बचाने के लिए लोगों को त्याग, कहां ऐसा और कहां ऐसे वैदिक राजा जो लोगों को बचाने के लिए अपना शरीर त्याग, पूरा 180 डिग्री। अब सोचिए माता पृथ्वी बेचारी कितनी बोझा हो रहा, कितना बोझा हो रहा होगा उसको। इसीलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, प्रभुपाद जी लिखते हैं आज कलयुग में नाम के रूप में इस हरे कृष्ण आंदोलन में, प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, और ये एक ही आंदोलन है जिसके द्वारा माता पृथ्वी का बोझा कम किया जा सकता है। आप बोलेंगे कैसे? बड़ी सरल सी बात है, आप खुद देखिए, देश दूर की बात, समाज दूर की बात, परिवार दूर की बात, जब आदमी उसके हृदय में अधर्म के विचार भरे रहते हैं वो खुद बोझा बन जाता है उसके लिए, उसका हृदय बोलता बहुत बोझा हो गया मेरा जीवन, ऐसा बैठता है। क्यों? क्यों बोझा हो गया? क्योंकि भौतिक चीजें बोझा है, कोई भी भौतिक चीज, एक आदमी जब मर जाता है चार लोग उठाना पड़ता है उसको, मरते ही कितना बोझा बढ़ जाता है उसका, उसका वजन बढ़ जाता है, पर वही जीवित रहता है तो हाई जंप भी करता है वो 5 फुट तक अपने आप कूदता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की वो शक्ति है, जिस हद तक आत्मा शुद्ध हो जाती है उस हद तक व्यक्ति भी हल्का हो जाता है, उसका जीवन में बड़ा हल्का महसूस करता है जब चिंतित रहता है। चिंता कब? जब वो आत्मा आवरण हो जाता है उसके। आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा न लेन च। जब ये आवरण हो जाता है, भौतिक आवरण, काम क्रोध लोभ मोह का आवरण हो जाता है, तो उसका जीवन ही उसको हमेशा चिंतित रहता, हमेशा चिंतित रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को कहा, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, सब कुछ नियंत्रण किया तूने, पर आज भी हमेशा तू चिंतित है। क्यों? चिंता है, भय है, इसका मतलब है शोक मोह और भय ये बोझा बन जाता है। और एक व्यक्ति के हाथ में 50 किलो का थैली एक हाथ में दीजिए और दूसरे हाथ में 50 किलो का थैली दे दीजिए और उसको बोलिए भागो भागो दौड़ो, आनंद से दोनों हाथ उठाओ और हरे कृष्णा बोलो, कैसा उठाएगा 50-50 किलो है दोनों हाथ में। इसीलिए वो लोग ऐसा देखते रहते हैं बस, और भक्त सामने से नाच के हरि वो ऐसा कैसा नाचते ये लोग, नाचते कैसे ये लोग, वो नाच नहीं पाते, नाचना तो दूर, हाथ नहीं उठा पाते, कोई बंदूक दिखाएगा तब हाथ उठाएंगे शायद जबरदस्ती, मृत्यु आएगी तब शायद उठाएंगे, नहीं उठा पाते। तो ये बोझा है हृदय से, हृदय में भी जब ऐसे विचार, भौतिक विचार ज्यादा आ जाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा बोझा बन जाता है। पर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये नाम जब वैयक्तिक रूप से लेते हैं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ये किसका बोझा है? पाप का बोझा। एक पापी व्यक्ति हमेशा बोझा, पापी और ईर्ष्यालु, बोझा, वो सब दूसरे को प्रसन्न देख नहीं सकता, उसके हृदय में बोझा बढ़ता है। दुर्योधन के हृदय में जलता था जब वो देखता था युधिष्ठिर महाराज को इस तरह से, लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, लोग उनका इतना यश फैल रहा है, गुणगान हो रहा है, बोझा बढ़ जाता है। तो वैयक्तिक रूप से भी जब भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में कलयुग में अवतरित होते हैं तो कम से कम व्यक्ति का, उसका खुद का हृदय बोझापन दूर हो जाता है। फ्रॉम हिप्पीस दे बिकम हैप्पीस, प्रभुपाद ने कर दिखाया। ये हिप्पी न केवल उनका जीवन बोझा था, हमेशा पी के सोए रहते थे, अब आप नाच के गाने लगे, जाने लगे सब जगह, न केवल वो अमेरिका के लिए समाज इतना खर्चा करती थी, उस समय सरकार इतना खर्चा कर रही थी कि ये ड्रगिस्ट हो गए हैं, ये अल्कोहलिक इतना लेते हैं, ये चर्सी लोग हो गए हैं, सारे हिप्पी बन रहे हैं हमारे नौजवान लोग, इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ये करके वो करके करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने उनको कहा, एक काम करो, तुम इतना करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो ना ये रिहैबिलिटेशन, सारा पैसा मेरे को दे दो और एक बड़ा कोई हर एक शहर के बीच में एक सबसे बड़ा जो हॉल है ना वो हॉल मेरे को दे दो और थोड़ा पैसा दे दो, उसमें मैं खूब फर्स्ट क्लास प्रसाद बनाऊंगा और हर रोज हरिनाम करूंगा और खूब पैसा उनको प्रसाद खिलाऊंगा, फिर देखो चोरी बंद हो जाएगी, डकैती बंद हो जाएगी, सबके सब जिम्मेदार हो जाएंगे और सब योगदान करेंगे समाज को, समाज के लिए बोझा नहीं बनेंगे। क्योंकि पूत सपूत, एक बच्चा जो भक्त बन जाता है, एक वैष्णव बन जाता है, न केवल अपने मां बाप को वैयक्तिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उनका बोझा भी निकाल देता है, करोड़ों जन्मों का बोझा निकालकर उनको भी मुक्ति मिल जाती है। कैसा तरीका ये? उस परिवार का बोझा निकल जाता है। हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी है, जब वो ब्रह्मचारी के लिए आ गए और ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन किए तो उनके पिता माता थोड़ा बहुत विचलित हो गए, ऐसा क्यों आके फिर बातचीत चलता रहा। फिर कई सालों के बाद वो आए, बीमार थे, तो ये ब्रह्मचारी घर गए थे, घर जाके उनको प्रचार प्रचार किए, उनको नाम के बारे में बताया। उसके बाद जब ठीक हो गए, वो सुधर गए, तबीयत ठीक हो गया, तो वापस आए और वो हमारे मंदिर के अध्यक्ष को उस समय बोल रहे थे कि आपने ये मेरे बेटे को जिस प्रकार से ज्ञान दिया है, आज केवल इसके कारण मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। आज मेरे हृदय में कोई चिंता नहीं है, भले समस्याएं हैं मेरे जीवन में, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसने मुझे ऐसा चीज बताया, ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा एक मार्ग दिखलाया है जिसके कारण मैं समझ सकता हूं जीवन का उद्देश्य क्या है, और कुछ मतलब आया मेरे जीवन में। पहले मतलब नहीं था, सब कर रहे हैं इसीलिए मैं भी कर रहा हूं बस, और जिन बच्चों के लिए मैंने पूरा अपना जान दिया वो आज कहीं हैं, कुछ कर रहे हैं, न उनको मालूम न मुझको मालूम कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बोला सचमुच में ये लड़का मेरे लिए, मुझे हमें समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा काम तो इसी ने किया, ये लड़के। बोझा हल्का हो गया उनका। और आप सोचिए, अगर एक समाज में ज्यादा से ज्यादा वैष्णव हो, कितने आज हम देखते हैं ना यहां से कितने मुर्गी जाते हैं, ठा कितने काटा जाता है, कम से कम वो बोझा तो कम हो जाएगा। एक व्यक्ति भक्त बन गया यानी ऑटोमेटिक शाकाहारी बन गया, कितने जीव बच जाएंगे सोचिए। जिंदगी में कितना खाता है, हर एक हफ्ता अगर एक एक खाता हो, कुछ लोग तो दिन में चार बार कत लेते हो, कितने पाप कर्म बच जाएंगे, कितने पशुओं का गला कटना बच जाएगा, कितना फायदा होगा लोगों को। ये तो एक 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 पहलू मैं देख रहा हूं, और भी कितने खर्चा कम हो जाता है। क्या खर्चा है हमारा, बस कुछ नहीं, प्रसाद खाना, बस बाहर जाने का, घूमने फिरने का, इधर उधर होटल वोटल खाने का, सब खर्चा ही नहीं, सुखी हो गया, चिंता रहित हो गया। और ऐसे पूरे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाए, और सबके लिए एक ही तरीका है, नाम रूपे कृष्ण होता, वैयक्तिक रूप से हरि नाम लेने से हमारा हृदय का बोझा कम होगा। परिवार में एक व्यक्ति अगर भक्त बनता है, वैष्णव बनता है, तो उनकी पीढ़ियां उद्धार हो जाती है, उनका बोझा कम हो जाता है। और अगर समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे, भक्ति का मार्ग को स्वीकार करेंगे, तो पृथ्वी माता भले नौ नालायक बच्चे हों, अगर एक अच्छा बच्चा है ना, सिर्फ उसको देखकर माता को शक्ति मिलता है, चलो एक तो सुधर, एक तो है कम से कम, वो दूसरों को संभाल लेगा। इसी तरह से आज पृथ्वी माता का इतना बोझा होते हुए भी फिर भी अभी तक ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं गई, गई है या मुझे नहीं मालूम, पर शायद देखती होगी, एक मेरे पुत्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना जीवन देकर पूरे विश्व भर में इतने लोगों को बोझा जो था इनका बोझा, अभी ये प्रेम का बोझा है, ये प्रेम का बोझा अच्छा लगता है। आप बोलेंगे बोझा अच्छा भी लगता है, यस। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एक बिजनेसमैन को बोलो कि प्रभु जी थोड़ा बोझा उठाना पड़ेगा आपके लिए, देखू क्या, बोले पूरे 100 रुपए का ना एक बड़ा थैली है मेरे पास, मैं किसी को देना चाहता हूं पर बहुत बोझा है मेरे कंधा है ना, वो बोझा नहीं है, वो बिजनेसमैन के लिए नोट गिनना बोझा है क्या, करोड़ों लाओ मैं गिनूंगा, गिनने के बाद मेरा। जिस तरह एक बिजनेसमैन के लिए करोड़ों रुपया भी दे दो वो बोझा नहीं है, जिस तरह एक स्त्री के लिए पति का बोझा बोझा नहीं है वो सेवा का, इसी तरह एक मां के लिए एक बच्चे का बोझा बोझा नहीं है, जब प्रेम हो और प्रेम में आदान प्रदान हो, वो प्रेम का बोझा है, वो बोझा अच्छा है, आनंद आता है वो बोझा लेने में। तो इस तरह से पृथ्वी माता अपनी बोझा, अपनी बोझ जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई बेचारी। क्या कहते, कभी कभी बच्चे बड़े हो गए, अरे 16 साल के बाद उनको कैसा पिताजी को क्या बोलते, बाबाला सांग तुम, तू ना तू सुनता नहीं है ना, आने देते पिताजी को, आने तो बोल, अरे ठीक है ठीक है। पर अरे हट्टा कट्टा 18 साल का हो गया तो पिताजी भी डरता है बोल डालने के लिए, डांटने के लिए, पता नहीं मेरे के ऊपर ही चार लगा देगा ये, आजकल कलयुग में के बोल नहीं सकते, बड़ा हो गया है खुद कमाने लग गया ये, इसीलिए बोलते हैं अभी तो ऊपर बड़े पिताजी को बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी बोली इसको तो मैं भी नहीं संभाल सकता, ऐसे ऐसे लोग हैं, इस पृथ्वी का सारा बोझा मैं भी नहीं संभाल सकता। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस नहीं संभाल पाते तो बोलते अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, सीआरपीएफ को लाना पड़ेगा, बीएसएफ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बोले ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं चलेगा, चलो सब ऑफिसर को लेके चलो हम लोग चलते हैं। शिव जी आए, ब्रह्मा जी, शास्त्र वर्णन करता है यहां, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सारे देवी देवता सबको लेकर वो क्षीर सागर के पास गए। अब ब्रह्मा जी और शिव जी ये हैंडल नहीं कर सकते, नहीं, जो पालन का काम है, सृष्टि करना ब्रह्मा जी का काम है, रजोगुणी, रजोगुण के अधिपति हैं, नाश करना शिव जी का काम है, पर पालन करना, मेंटेनेंस, ये केवल विष्णु ही कर सकते हैं, या विष्णु से एम्पावर्ड, विष्णु के एम्पावर्ड प्रतिनिधि जिनको कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति जिसमें संचारित हुई है, ऐसे व्यक्ति ही ये मेंटेनेंस का जो धर्म संस्थापनार्थ है कर सकते हैं। तो इसीलिए सब वहां गए। बट एक अद्भुत बात भागवत में वर्णन है, गए भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट नहीं था। बड़े बड़े मिनिस्टर जाते पर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि आए तो आके खड़े हो जाएंगे, नहीं, खड़े क्षीर सागर, ब्रह्मांड के अंत में क्षीर सागर है, क्षीर सागर के पास जाकर खड़े हुए, खड़े होकर उन्होंने स्तुति की, पुरुष सूक्त नाम के प्रार्थना की जो आगे वर्णन है। पुरुष सूक्त की स्तुति करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, फिर ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए, ध्यान करने लगे, भगवान के ऊपर जब ध्यान की तो उनके हृदय में भगवान ने मैसेज भेजा, हरि बोल ब्रह्मा, हरे कृष्णा, हाय तो का सुन रहे हो, चलो मैं बोलता हूं, मैसेज ले लो, सबको बता देना, तुम लोगों के यहां आने से पहले मुझे मालूम हो गया था, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह विराजमान है, मालूम हो गया था तो पहले से कुछ क्यों नहीं किए, हो सकता है ना कोई पूछ सकता है कि नहीं, भगवान भी कभी कभी लगता है ये लोग कुछ करते क्यों नहीं भगवान, अरे इतने लोग ऐसा कैसे चीज चल रहा है, क्यों चुपचाप है, क्या भगवान इतनी निर्दयी है, तुरंत इसको मार काट के खत्म नहीं क्यों कर देते, ऐसा बड़ा आसुरिक आदमी, इतने बच्चे को मार डाला, पहले से कंस को मार सकते थे, क्या शक्ति नहीं थी, भगवान एक सिस्टम बना दिए हैं और सिस्टम में वो इंटरफियर नहीं करते, वो सिस्टम ही परफेक्ट है, पर जब वो देखते हैं परित्राण, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब बहुत ही ग्लानी हो गई है, मतलब किसी को तुरंत सजा नहीं देते, मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं, ठीक है सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, चल चल गया और एक बार, चलो और एक बार मत कर, सोच ले, इतने दयालु हैं भगवान। और हर एक की इच्छा को पूर्ण करते हैं वो। तेरी ये इच्छा है, ठीक है पूर्ण कर ले, देख ले, कोशिश करके देख ले। पर जब वो देखते हैं कि अनावश्यक ही भक्तों को बहुत तकलीफ हो रहा है और नादान साधारण जन साधारण को भी बहुत अनावश्यक तकलीफ हो रहा है और वो सहन नहीं कर पा रहे, चिल्ला रहे, तब भगवान बोलते हैं ठीक है आप, मुझे ही आना पड़ेगा, ठीक है। तब तक वो मौका देते हैं। और ये सारे असुर ने अपनी तपस्या भी की थी, हिरण्यकशिपु रावण बहुत तपस्या की थी, वरदान मांगा था, वर मिला था उनको, तो ठीक है इतना तपस्या किया है तो उसका भोग तो करने दो, तपस्या का फल है, ठीक है। पर जब वो तपस्या का फल एग्जॉस्ट हो गया, कब, जब वो अपराध करने लगे, भगवान इनको भी बताते हैं, ब्रह्मा जी को, देवताओं के जब जाते हैं हिरण्यकशिपु से तंग आकर, तो भगवान बोलते हैं ठीक है करेगा, ये उसने तपस्या की, तपस्या से फल से उसको शक्ति मिली है, उसका उपयोग कर रहा है। पर जिस दिन ये अपने महाभागवत पुत्र के ऊपर अनावश्यक अत्याचार करेगा, तब मैं अवतरित होकर उसे मार डालूंगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो जब कंस ने देखा, देव की आप देखते हैं जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ेगी हम देखेंगे, आप सब सुने हुए हो, जब उस तरह से अत्याचार हुआ तब कहेंगे ठीक है। तो केवल विष्णु ही, तो भगवान ब्रह्मा जी समाधि में गए, तो भगवान ने उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि की शुरुआत में भी ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। देखिए ब्रह्मा जी शिव जी बड़े बड़े देवतागण प्रार्थना करने जा रहे हैं, ब्रह्मांड के कोने में जा रहे हैं, क्षीर सागर के तट पर खड़े हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का मैसेज मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं होता, इतना दुर्लभ है भगवान का दर्शन। और वो भगवान हमारी आंखों के सामने प्रकट होकर सुंदर लीलाएं की, कितना भागवत में वर्णन है, महाविष्णु भी दर्शन करने आए भगवान की, पता चला कि द्वारका में लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के सारे पुत्र को उठा लिया ताकि भगवान का दर्शन हो जाए उनका, महाविष्णु भी लाल आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। और ऐसे भगवान का दर्शन सारे द्वापर के अंत में 5000 साल पहले भगवान खुद अवतरित हुए, 125 साल तक, सोचिए कोई भी उनको जाकर देख सकता था, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए। तो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है ऐसा दर्शन। और फिर भगवान ने कहा के मैं अवतीर्ण होऊंगा यदुवंश में, आप सबसे निवेदन है कि आप सब सुरस्त्री संभवंतु, आप अपने सारे पत्नियों के साथ यदुवंश में अवतरित हो जाइए ताकि मेरे लीला में आप सहायता कर सकते हैं। क्या भगवान को इन सारे देवताओं की जरूरी है, सहायता की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि खास करके ऐसे महान योगी, ऐसे पुण्यात्मा जो देवताओं की योनि में है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहे हैं, हो गए हैं, ऐसे लोगों को एक मौका मिलता है कि भगवान जब इस ब्रह्मांड में अवतरित होकर लीला कर रहे हैं, उनकी लीला में भाग ले और उनको एक ट्रेनिंग मिले, प्रशिक्षण मिले, क्योंकि भगवत धाम जाने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है, कैसे सेवा करना है भगवान की, बिना ट्रेनिंग के नहीं भेजते आपको। समझ लीजिए आपको कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, आपको कोई कंपनी में लिए, तो आपको पहले ट्रेनिंग दिया था 1 महीने का, नहीं तो जाके पहले ही बार डिलीट बटन दाब दिया, सारा प्रोग्राम उड़ गया उनका, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। दो दो महीने का ट्रेनिंग देने के बाद टेबल पे बैठाते आप, कहीं समझ लीजिए आपको जैसा कमांडो, कमांडो लोगों को बहुत ट्रेनिंग देते हैं, बिना ट्रेनिंग दिए भेज दिए, धुआं आ गया तो भाग जाएगा, बम फूट गया तो भाग जाएगा, उसको मालूम ही नहीं कैसा छलांग मारने क्या करना है, सब प्रकार की परिस्थिति से ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए, ब्रिज टूट गया छलांग मार के जाना चाहिए, स्विमिंग आता है क्या? कभी नहीं सीखा, बोले चल अभी चल छलांग मार, कोई ऐसा चीज नहीं है, मतलब कोई इमरजेंसी के लिए तैयार, सब प्रकार की इमरजेंसी ट्रेंड अप, फिर जाके उसको भेजते हैं। कोई अगर सैटेलाइट में जाता है ना चंद्रमा की ओर, भले पहुंचे नहीं कम से कम यहां से तो बाहर निकलता है, तो वहां ग्रेविटी नहीं होता है, वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता है, तो हवा में उड़ने लगता है, हवा में उड़ेगा तो कैसा काम करेगा आदमी, आदत नहीं हवा में उड़ के, माइक ऐसा उड़ते रहे करताल उड़ते रहे तो पकड़ने भी नहीं आता हाथ उड़, तो उनको अभ्यास दिया जाता है एक ऐसा परिस्थिति में, सिमुलेटेड बोलते हैं उसको। हमारे पूना में एक सेंटर है, वहां जो हवाई जहाज में उड़ाते हैं ना उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक छोटा सा कमरा है, कमरे के अंदर घुसा देते हैं उसको, वो कमरा में ऐसा लगता है कि आप प्लेन में हो, और इतना बड़ा स्क्रीन है, वो स्क्रीन से बाहर देखो तो ऐसा लगता है आप हवाई जहाज में हो, दुनिया देख रहे हो बाहर, वो स्क्रीन है एक्चुअली, और जैसे आप बटन दबाते हो तो अगर जब एयरक्राफ्ट अगर 80 किलोमीटर जोर से जाए तो किस तरह से आपके सामने पेड़ गुजर रहे हैं पीछे पीछे, ऐसा स्क्रीन से गुजर रहा था, आपको लगता है कि आप सुपरमैन जैसे जा रहे हो एकदम, और बाद में सडनली ऐसा ऊपर चला गया, जमीन दूर हो जाता है, एकदम छोटा सा निकलने लगता है, मतलब हवा में उड़ गया मैं, कहीं नहीं आप उधर ही खड़े हो और रूम के अंदर, पर ऐसा होता है उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा, ए, सामने ए, प्लेन आ गया, घुमाओ। क्यों क्यों ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि पहले ही जाके प्लेन में बैठा दिया और उसने धक्का मरवा दिया, करोड़ों का नुकसान, एक एक प्लेन कभी कभी करोड़ों के होते, बहुत करोड़ मतलब हजारों करोड़ 100 करोड़, तो भेजने से पहले पूरा ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो भगवत धाम में भेज दिया तो अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, जाके वहां तहलका मचा देगा उधर, ट्रेनिंग नहीं मिला है तो उल्टा सीधा सब कर देगा उधर, गोपियों को देखेगा तो बोलेगा है रासलीला करने की इच्छा हो रही है, चल इधर वापस। तो उनको एक ऐसे जगह भेजा जाता है जिस ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं, और उनको गोपी भरतुर पद कमले और दास दास अनुदास ट्रेनिंग मिलता है, वेद गोपियां ऋषि गोपियां बहुत सारे गोपियां इस तरह से वो सब आए भगवान की लीला में मदद की, ट्रेनिंग मिला, और उसमें शुद्ध होने के बाद भगवान की सेवा से शुद्ध हो जाते हैं सानिध्य से, और तब उनको ट्रेनिंग हो गया अप्रेंटिसशिप, उसके बाद भेजते हैं वापस, चलो अब तैयार हो गए। तो ऐसे लोगों को भगवान ने कहा आ जाओ मैं आ रहा हूं ट्रेनिंग, 125 साल का ट्रेनिंग, और उसके बाद हम सब जाएंगे वापस। तो इस तरह से रूपा जी समझाते हैं कि भगवान ने इनको कहा तत्प्रियार्थम, भगवान की प्रसन्नता के लिए, देवतागण मतलब जो तत्प्रियार्थम, तत्प्रियार्थम मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति देवता। आप ऐसा मत समझिए कि देवता मतलब जमीन से 2 इंच हवा में हो तो देवता है, या देवता मतलब स्वर्गलोक में जो निवास करता है वो देवता है, नहीं, देवता यानी तत्प्रियार्थम, जिसका एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, भले वो असुर योनि में क्यों ना हो प्रहलाद महाराज जैसे, या देव योनि में होते हुए भी तत्प्रियार्थम भगवान की तृप्ति ध्यान न रखते हुए अपना स्वार्थ, तो असुरिक बन जाता है। हम देखते हैं नलकुबेर के पुत्र, कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव, शाप मिल गया उनको स्वार्थ के हेतु, तत्प्रियार्थम ने स्वार्थम स्व अर्थम तो इस तरह से बोले सारे देवताओं को बोले आप अवतरित हो जाइए। और फिर बहुत सुंदर से वहां कथा समाप्त करते, वो बैकग्राउंड पार्श्वभूमि पहले बता दिए, पृथ्वी ऐसे गई थी, भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी को कहा, फिर वो भगवान बोलना बंद किए, फिर ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, देवताओं अभी अभी मैसेज आया है कि भगवान आने वाले हैं, वेन्यू बता दिया कहां आने वाले हैं, टाइम बता दिया, बोले हरि बोल मैं जाता हूं ब्रह्मलोक, चले गए और सब अपने अपने जन्म ले लिए। कहां? यदुवंश में। यदुवंश के दूसरे आसपास के संबंधित जो भी वंश है, उनके मित्र जो भी थे, दशारह, भोज इत्यादि बहुत सारे वंश, तो उस वंश में सब देवतागण जन्म लेने लगे। कोई भगवान के अलग अलग, कोई गोपियों में, ब्रज में, कोई इधर, कोई मथुरा में, द्वारका में, सब लोग जन्म ले लिए। और कथा का भी दृश्य बदलता है। दृश्य कहां बदला? मैरिज पार्टी मथुरा में। ऐसा होता है ना, पिक्चर दिखाते दिखाते सीन बदलते हैं, बेटे अभी हीरो का यहां तक आया, हीरोइन का देखे क्या हो रहा होता जीवन। तो इस तरह से यहां बता दिया, अभी बोलते चलो दूसरी जगह दिखाते, अभी मथुरा में क्या हो रहा है। खास मथुरा, मथुरा का वर्णन है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। क्यों भगवान मथुरा में आए? बोले मैं मथुरा में जन्म लेने वाला हूं। धाम मथुरा जो है भगवान का नित्य धाम है। कृष्ण आने से पहले ही मथुरा रहता है, ब्रज पहले से ही था वो, ये नित्य धाम है। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़कर भी जाते नहीं, अप्रकट हैं और बीच बीच में कभी प्रकट होते हैं। पूरी सृष्टि का नाश होने के बावजूद भी ये धाम शाश्वत हैं, नित्य हैं, इनका नाश नहीं होता। गीता में भी वर्णन है आठवें अध्याय में, भूत्वा, ये संसार कैसा है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, पर आठवें अध्याय के शायद 20वां श्लोक है जहां कहते हैं वो धाम, इस सब धाम के नष्ट होने पर भी वो धाम जिसका नाश नहीं होता वो मेरा धाम है। तो ये ऐसा मथुरा में भगवान, इसी तरह से नवद्वीप धाम जो है वो भी अभिन्न है। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होए ब्रजभूमे वास। आचार्य कहते हैं गौड़ मंडल भूमि नवद्वीप धाम जो है, जेवा जाने चिंतामणि, जो समझ जाता है कि ये भी चिंतामणि है, अभिन्न है ब्रजमंडल से, तार होए ब्रजभूमे वास, वो व्यक्ति ब्रजवासी बनने योग्य है। केवल मथुरा में निवास करने से भगवान के संपर्क में कोई आ सकता है, इतनी शक्तिशाली है ये धाम, भगवान ने जहां लीला की है। कुछ लोग वचन लेते हैं इसीलिए कि जीवन के अंत में हम ऐसे धाम में जाएंगे और वहां से निकलेंगे नहीं, हम बाहर वहीं शरीर छोड़ेंगे। कई लोग ऐसे शरीर छोड़ते हो, आज आप जाएंगे, कई बूढ़े लोग खास करके बंगाली बूढ़िया हम देखते हैं राधा कुंड के आसपास, वो आ जाते हैं वहां और वहीं शरीर छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया। बहुत बहुत तकलीफ होता है, बहुत काफी तपस्या है वृंदावन में रहना, लगता दूर से बहुत अच्छा है वृंदावन, वृंदावन जाने के बाद समझ में आता है क्या ठंडी और क्या गर्मी, अरे अरे दोनों एक्सट्रीम, सचमुच में बड़ा तपस्या है। फिर भी वो लोग रहते नहीं, कुछ भी और रहना है, अभी बस यही शरीर छोड़ना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे जगह में रहना अच्छी बात है, पर अगर वो सेवा के रूप में उस धाम से अगर बाहर भी जाता है कृष्ण की सेवा हेतु, तो वो कभी धाम से अलग नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, वो वृंदावन में ही थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, पर वो गए किस लिए? कृष्ण की सेवा हेतु, पूरे विश्व को वृंदावन की महिमा बताने के लिए। विश्व भर में वृंदावन वातावरण बनाने के लिए जो जिसके हृदय में वृंदावन की भावना है, वही व्यक्ति वृंदावन का दर्शन करा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति जब जाते हैं तो भले वो बाहर गए हैं पर वृंदावन से अलग कभी नहीं होते वो। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे धामों में सेवा करता है, निश्चित रूप से शरीर त्यागने के बाद वो भगवत धाम जाता ही है। और हर एक भक्त को चाहिए कि ये जो संदेश दिया गया है, इन धामों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये धाम है ताकि हम लोग उसका पूरा फायदा ले, पूरा लाभ ले, तो लाभ लेना चाहिए। अगर निवास नहीं कर सके तो ज्यादा से ज्यादा समय जब भी मौका मिले जाके दर्शन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो इस तरह से धाम की महिमा वहां बताएं। और शुरू हो गई, देव कंस बैठा हुआ है, रथ पर सवार हुआ है, देवकी और वसुदेव बैठे हुए हैं। अभी अभी शादी हुई है, बारात निकली हुई है और दोनों बैठ के, और भैया राजा बड़ा भाई आ गया, चलो आपको मैं अपने ससुराल छोड़ के आता हूं। प्रथा है ऐसे कि पहले पहले दिनों में पूर्व काल छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता, तो पूरा नया परिवार, नए लोग, किसी की पहचान ऐसा नहीं कि उनका फ्रेंडशिप चल रहा था पहले से, चार साल से चल रहा था, अभी बस समाज के लिए थोड़ा दिखाना चाहिए ना, शादी हो गया, वो तो किसी को बोने बिलाई चले जाती है, बाद में पता लगता है कि वो गई उधर है उधर। पर ऐसा नहीं था, शादी कुछ को नहीं मालूम कहां जा रही है, कैसा होगा, क्या हो, इसीलिए भाई जात में जाता था, छोड़ के दो दिन रहता था, सब ठीक है ना, कंफर्टेबल है, कुछ चाहिए क्या, एडजस्टमेंट करूं, मैं बोल के समझा देता हूं, छोटी लड़की है, क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम इसे। और उसको एकदम सब लोग, नए नए लोगों के बीच में अजीब लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा कंफर्टेबल होने तक थोड़ा जाना। तो प्यारे भैया तैयार हो गए, घोड़े पर सवार हुए, रथ पर सवार हो गए, और उसके साथ साथ, देवकी के साथ साथ बताया गया है, यह शब्द आता है पारिबरहम, पारिबरहम मतलब डौरी। देवकी के पिता महाराज देवक ने काफी डौरी दी थी, क्या डौरी दी थी सुनना चाहते हैं? 400 हाथी, एक हाथी को खरीदना तो हाथी खरीद लेंगे, मेंटेन कौन करेगा, 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1,800 रथ, ये सब चलेगा, 200 आभूषित, सुवर्ण द्वारा आभूषित कन्याएं। तो 200 कन्याएं क्यों? ये उनके गर्लफ्रेंड देवकी के, हमेशा कोई राजकुमारी ऐसे जाती थी उनके सहेलियों के साथ, ताकि उसको मदद होता है ना सब कुछ, उनको मालूम है किस तरह से इनका सेवा करना है, राजपाट में जो बड़ा हुआ है उनके साथ। और राजा को न केवल वो, बट उसके साथ साथ और 200 कन्या। तो इस तरह से इतने लोग गए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि ये डाउरी सिस्टम था, इट इज परफेक्टली लीगल, इलीगल नहीं है ये, इट इज परफेक्टली लीगल। लीगल को क्या कहते हैं? हिंदी में नैतिक, नैतिक कायदे, कायदा, हाँ अच्छा। तो क्यों क्यों ये परफेक्ट? बिकॉज वैदिक संस्कृति में ऐसा था, सारी संपत्ति जनरली लड़के को जाता है, तो जब लड़की जाती थी प्रेम से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, प्रेम से, उसको कहता थे बेचारी इतनी प्रिय है, तो जितना हो सके आराम से सुखी रहे, ये जितना हो सके उतना धन दे के भेजते थे। तो ये स्वाभाविक था ये। पर दुर्भाग्यवश आज थोड़ा समस्या हो गया है, जब डिमांड करते हैं नहीं तो उनको ही जला डालते, तो समस्या हो जाता है वो। तो निकले वहां से और सब कह रहे थे वाह क्या प्रेम, क्या वात्सल्य है कंस के अंदर। चल रहे थे और कंस भी आजकल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं सबको, और एक हाथ में रथ सवार और दूसरे को सबको विदा कर रहे हैं, चले निकल रहे हैं, और जैसे जा रहे हैं थोड़े दूर में एकाएक कहा जाता है अशरीर वाक, बिना शरीर के आवाज, यानी आकाशवाणी, कोई पीछे कर्टन के पीछे खड़े होके नहीं बोल रहा है जैसे ड्रामा में होता है अशरीर कोई नहीं, कोई शरीर नहीं है, और एक आवाज आई यानी आकाशवाणी हुई। कौन ये कह रहा था? ऑफ कोर्स देवतागण, वो भी डर के मारे छिपके खड़े हुए थे, सामने आ जाएंगे तो कंस बोले अच्छा तुम लोग बोल रहे, नहीं वहां से बोलने लगे, बोले हे कंस तू कितना मूर्ख है, तेरे काल को ले जा रहा है बड़े प्रेम से, यही देवकी, इसका आठवां संतान जो है ये तेरा काल स्वरूप हो जाएगा, तेरा वध कर देगा। अभी सवाल उठता है कि देवताओं ने क्यों इतना बीच में, क्या बोलते हैं हम, टांग अड़ाना बोलते हैं, क्यों किए? अरे कंस को भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया ब्रह्मा जी को, ये बीच में क्यों है सब हाथ पैर लगाना? बोले इसका कारण ये है, जल्द से जल्द भगवान आए, भगवान तब आएंगे जब कंस देवकी के प्रति अपराध करेगा, तो पहले से अनाउंसमेंट कर दी, सरप्राइज ही नहीं रखा, पहले से अनाउंसमेंट कर, आपको सरप्राइज होने वाला है, इसका आठवां पुत्र तुम्हें मारने वाला है, पहले से अनाउंस कर दिया। कभी कभी ना कुछ माता कुछ करने वाली है, पिताजी का बर्थडे है तो सरप्राइज देने वाली है, तो माता कुछ केक ला के रखती, बच्चे को बोलती बेटा बोलना मत, पापा के लिए है, गेट के पास खड़ा था पापा मामा आपको सरप्राइज देने वाली है, केक रखी है कर्टन के पीछे रखा हुआ है क्योंकि बच्चे को आतुरता है जल्दी मेरे को केक मिलेगा कटेगा तो तो इस तरह से देवताओं को बोले अब कब पता नहीं ये प्रेम से अगर विदा करके आके बैठे रहेंगे, वो दोनों उधर ही बैठे रहेंगे तो बच्चे कब होंगे, जल्द से जल्द हमको चाहिए, हो सके तो कि देवकी ही मर जाए, अरे मार ही देंगे तो शायद न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको देवताओं को मालूम था कि जो होने वाली भगवान ने कह दिया होगा, फिर भी देवताओं ने इसलिए कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बड़े प्रेम से कंस रहे। इसके अलावा देवताओं को मालूम था कि मरीचि के जो 6 पुत्र हैं जिनको शाप मिला है कि कंस के हाथों द्वारा वो मारे जाएंगे, उसी के पुत्र, कंस के ही पुत्र, पिछले जन्म में कंस कालनेमी था और कालनेमी को शाप मिला था कि तेरे ही 6 पुत्रों को तू ही तेरे हाथों से मारेगा, पुत्रों को शाप था, वो भी होना चाहिए नहीं तो 6 पुत्रों को कैसे मारेगा। और तीसरा, जब वसुदेव का जन्म हुआ था जिनका दूसरा नाम था आनक दुंदुभी, वसुदेव का दूसरा नाम था आनक दुंदुभी, मतलब जब उनका जन्म हुआ, वसुदेव का जन्म हुआ, तो एक आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र के द्वारा, उनके मां बाप को, कि इस पुत्र के द्वारा एक भगवान खुद अवतरित होंगे, एक अवतार जन्म लेंगे। तो इस तरह से, और जानबूझकर देवताओं ने यह नहीं बोला कि लड़का होगा या लड़की, कंस तेरा आठवां पुत्र, नहीं बोले, आठवां गर्भ। क्यों? थोड़ा सस्पेंस में रखे, कल लड़की हो गया तो बोलेंगे अरे देवता भी झूठ बोलते हैं क्या, बोले नहीं, आठवां गर्भ, ताकि अगर भी एक लड़की पैदा हो जाए तो संशय नहीं होगा उसको। तो इस तरह से अब एक असुर और एक सुर का तुरंत लिटमस टेस्ट बोलते हैं, मालूम है, लिटमस टेस्ट केमिस्ट्री में टेस्ट होता है, ये है कि ये है, कौन सा केमिकल है, ये हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन, क्या है, समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, एक काम करो, एक पेपर होता है, उस पेपर को सिर्फ उसमें डुबा, डुबाते ही अगर लाल का नीला बन गया तो समझ लेना वो ही है, और नीला का लाल बन गया तो समझना ये ऐसा है। इस तरह से एक असुर या सुर, बाहरी रूप से हर एक व्यक्ति कहता कि मैं असुर हूं, व्यवहार तो सुर जैसा होता है, पर कौन असुर है कौन नहीं है, इसका लिटमस टेस्ट क्या है, परीक्षा क्या है, तो इसको गले लगा रहा है ना, ये तेरे को मारने वाला है, अब भी खत्म करने वाला है, फिर उस व्यक्ति का व्यवहार देखो उसके प्रति। तुरंत कंस इतना प्रेम दिखा रहा था, मानो देवकी के प्रति इतना प्रिय है, प्रिय है, ऐसा नहीं कि कंस को प्रेम नहीं था, देवकी के प्रति प्रेम था, पर जब पता चला कि इस व्यक्ति से मेरा स्वार्थ चले जाने वाला है, जो भी वो सामने खड़ा है, चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त हो या स्त्री हो या बच्चा हो या कोई भी हो, भगवान भी क्यों ना हो, ये मेरा शत्रु है, इसे मारना ही पड़ेगा तुरंत, किसी ना किसी तरीके से, अधर्म या धर्म के तरीके से तुरंत मार डालो, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य है भोग करना, और भोग में जो मदद करता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, पर जब वो मेरे स्वार्थ में बाधा देने लगता है, त्वमेव शत्रु सर्वम त्वमेव, क्यों भी है, कोई भी सामने क्यों ना हो वो मेरा शत्रु है, तुरंत, मतलब स्वार्थ, और वही वसुदेव का लक्षण देखते, वसुदेव को भी उतने ही शौक लगा, ऐसा नहीं कि कंस को, वसुदेव को पता चला कि अरे अभी शादी हुई है, अभी सर काट दे रहे है, तो वसुदेव बोल सकते थे तुम भाई बहन का झगड़ा, मैं निकलता हूं भाई, तुम लोग संभाल लो, मैं क्यों करूं, नहीं बोले, अभी मैंने वचन लिया है अग्नि के सामने, अग्नि के सामने मैंने वचन लिया है, भगवान के सामने वचन लिया है कि मैं इसका संरक्षण करूंगा, भले मेरी जान भी जाएगी मैं इसका संरक्षण करूंगा, मेरी जान मैं इस गंवा दूंगा, पर इसका मेरा कर्तव्य करने के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं, और दूसरा मेरा कर्तव्य, मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा पड़ा तो जान लेने के लिए तैयार हूं। यह अंतर है एक आसुरिक प्रवृत्ति में और एक दैवी प्रवृत्ति में। पिछले जमाने में क्लियर क्लियर होते थे, असुर मतलब उसका लेबल होता था, मैं असुर हूं, भौमा असुर, अघा असुर, अभी असुर का लेबल नहीं है, सब सुर सुर सुर, पर व्यवहार द्वारा पता लगता है, क्यों, क्योंकि आसुरिक और सुर की प्रवृत्ति दोनों हमारे हृदय में है। एक लेक्चर में राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे, दो कुत्ते हमारे हृदय में बैठे हुए, एक अच्छा कुत्ता है और दूसरा बहुत ही खतरनाक कुत्ता है, एक सुर और एक असुर, दोनों हमारे हृदय में बैठे हुए, आप किस कुत्ते को खाना खिलाते हैं, किसको उपवास कराते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, जिसको खिलाएंगे उसकी शक्ति बढ़ेगी, जिसको उपवास रखेंगे, जिसको खाना नहीं खिलाएंगे, जिसको भूखे रखेंगे, उसकी धीरे धीरे शक्ति कम हो जाएगी, अंत में वो मर जाएगा। और यहां कंस और वसुदेव दोनों का साफ साफ लक्षण आया है। कृष्ण को अगर हमारे जीवन में लाना है तो सबसे पहले ये कंस की जो प्रवृत्ति है, स्वार्थ प्रवृत्ति, कि मैं स्वार्थ के लिए किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कोई भी वो मेरा शत्रु है अगर मेरे स्वार्थ में बाधा कर रहा है, मेरे इंद्र तृप्ति में बाधा कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति मेरी जान चले जाए पड़ेगा, पर मेरा कर्तव्य है, इसे मेरा मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी सेवा है और इसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। रिस्क, जोखिम में अपने अपने जीवन को जोखिम में डालना। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, बाहरी रूप से समझ में नहीं आता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रवृत्ति आती है। और ऐसा वसुदेव, एक शब्द महाभाग, वसुदेव महाभाग क्यों कहा गया है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में विचलित नहीं हुआ, एक समुद्र के समान, कितनी नदियां आए नहीं आए, सारे द्वंद्वों में शीतोष्ण सुख दुखदा ताम स्थितिक्ष भारत सहन करते हुए, ये संसार का नियम है, ऐसी समस्याएं आएंगी एकाएक, पर मैं अपना कर्तव्य, मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाते रहूंगा, भले काफी समस्याएं आ जाए हमारे जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, और उसे मालूम था कि एक क्रूर व्यक्ति को कैसे सांत्वना दे सक शांत किया जा सकता है, और अपने बुरे से बुरे शत्रु को भी कैसा माफ किया जा सकता है। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति के द्वारा कृष्ण प्रकट होते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में कृष्ण प्रकट होते हैं। तो बहुत कथा लंबी है, यहां समाप्त करेंगे, क्योंकि कल अभी जो अनाउंस किया गया था मीटिंग, सेवा का मीटिंग जन्माष्टमी का, वो बाकी है, तो तुरंत अभी शायद मीटिंग करेंगे, और अगर 9 बजे तक हो जाए तो 5 मिनट का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।